नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्टार्टअप इंडिया पहल के एक दशक पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री भारत के जीवंत स्टार्टअप इकोसिस्टम के सदस्यों के साथ बातचीत करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर स्टार्टअप प्रतिनिधि अपने उद्यमशीलता के सफर से जुड़े अनुभव भी साझा करेंगे।
स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत आज ही के दिन वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य नवाचार को प्रोत्साहित करना, उद्यमिता को बढ़ावा देना और निवेश आधारित विकास को सक्षम बनाना था। पिछले एक दशक में स्टार्टअप इंडिया भारत की आर्थिक और नवाचार संरचना का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनकर उभरा है। इस अवधि के दौरान भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में अभूतपूर्व विस्तार देखने को मिला है, जिसमें देश भर में 2 लाख से अधिक स्टार्टअप्स को मान्यता दी जा चुकी है। भारत 2030 तक 7.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने और विकसित भारत 2047 के व्यापक दृष्टिकोण की ओर अग्रसर है। वे न केवल आर्थिक वृद्धि के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेंगे, बल्कि भारत के भविष्य तैयार नवाचार आधारित आर्थिक मॉडल के स्थायी प्रतीक भी होंगे। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पश्चिम बंगाल के हावड़ा और असम के कामाख्या को जोड़ने वाली देश की पहली स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस सहित कई नई रेलगाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि भारत की विद्युत स्थापन उत्पादन क्षमता वर्ष 2014 के 249 गीगावाट से बढ़कर 2025 में 510 गीगावाट से अधिक हो गई है, जो दोगुने से भी ज्यादा है। कल नई दिल्ली में भारत विद्युत सम्मेलन 2026 के पूर्वालोकन में श्री मनोहर लाल ने कहा कि भारत विद्युत आधिक्य के नए युग में पहुंच गया है, जो विश्वसनीयता, सुलभता और अनुकूलता से परिभाषित है। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पर रोक लगा दी है। हाल ही में कोलकाता स्थित राजनीतिक परामर्श कंपनी आईपैक के परिसर और उसके सह संस्थापक प्रतीक जैन के आवास पर की गई तलाशी की कार्रवाई के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। न्यायालय ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है। अगली सुनवाई 3 फरवरी को होगी। निर्वाचन आयोग ने गोवा, लक्षद्वीप, राजस्थान, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल में जारी मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की समय सीमा 19 जनवरी तक बढ़ा दी है। अब लोग 19 जनवरी तक दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। एक पत्र में निर्वाचन आयोग ने कहा कि इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों, CEO के अनुरोधों और अन्य प्रासंगिक कारणों पर विचार करने के बाद संशोधित समय सीमा तय की गई है। महाराष्ट्र के बृहन्मुंबई महानगर पालिका और राज्य के 29 नगर निगम चुनाव के लिए कल हुए मतदान की गणना आज होगी। इस चुनाव में कुल 15,931 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में 23 जनवरी को JEE 2026 मेंस के लिए पहली पाली की परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों को विज्ञापित तिथियों में से कोई अन्य तिथि आवंटित की जाएगी। परीक्षा की तिथि में बदलाव 23 जनवरी को सरस्वती पूजा समारोह के मद्देनजर किया गया है। इसराइल की राजधानी तेल अवीव स्थित भारतीय दूतावास ने क्षेत्र में मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारतीय नागरिकों को इसराइल की अनावश्यक यात्राओं से बचने की सलाह दी है। दूतावास ने इसराइल में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने और स्थानीय अधिकारियों तथा समय समय पर सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देशों और प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने की सलाह दी है। किसी भी आपात स्थिति में भारतीय नागरिक दूतावास की 24 घंटे काम करने वाली हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है। नंबर है 972-54-75-20-711 और 972-54-32-78-392 पर आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप cons1.telaviv@mea.gov.in पर ईमेल भी भेज सकते हैं। खेलों में ICC Under-19 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में भारत ने अमेरिका को डकवर्थ लुइस नियम के अंतर्गत 6 विकेट से हरा दिया। ग्रुप ए के मुकाबले में कल भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।